नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत इसके एक विशेष अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं
जी।
अध्याय का नाम है तीन संकल्पों की महान पूर्णाहुति।
हाँ, ये बहुत ही अहम अध्याय है।
बिल्कुल। इसमें पूज्य गुरुदेव ने न सन 1986 के उत्तरार्ध का जिक्र किया है। वो समय उनके जीवन में बहुत खास था।
हाँ, एक तरह का मतलब महत्वपूर्ण पड़ाव था वो।
हाँ, पड़ाव, क्योंकि उनके जीवन के 75 साल पूरे हो रहे थे।
जी, हीरक जयंती।
हीरक जयंती, और इसके साथ ही वो एक एक लाख वाले 5 बड़े कार्यक्रम भी जुड़े थे जो पूरे हो रहे थे।
हाँ, 5 बड़े कार्यक्रम, वो भी समापन पर थे।
तो एक तो ये बड़ी बात थी, और साथ ही जो मिशन की प्रेरणा पुंज रही है अखंड ज्योति पत्रिका।
जी, अखंड ज्योति,
वो भी अपने प्रकाशन के 50वें साल में प्रवेश कर रही थी।
50 साल, उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी।
हाँ, स्वर्ण जयंती। तो ये दो बड़े अवसर एक साथ।
बिल्कुल। और यहीं पर एक तीसरी और शायद सबसे गूढ़, सबसे महत्वपूर्ण बात भी पूरी हो रही थी।
अच्छा, वो क्या थी?
वो थी पूज्य गुरुदेव की 3 साल से चल रही सूक्ष्मीकरण साधना।
हाँ, सुना है इसके बारे में, सूक्ष्मीकरण साधना।
जी, इसे समझना थोड़ा जरूरी है। मतलब स्थूल शरीर की सीमाओं से आगे जाकर अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को सूक्ष्म स्थल पर ले जाना,
परिष्कृत करना, केंद्रित करना।
बिल्कुल। उसे ही सावित्री साधना भी कहा गया, या फिर भारतवर्ष की जो देवात्म शक्ति है उसकी कुंडलिनी जागरण साधना।
ओ, इतना गहरा अर्थ।
हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा मतलब ध्यान खींचती है ना।
हाँ।
वो ये है कि गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि ये जो गहन साधना थी ये किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, जैसे स्वर्ग मिल जाए या मुक्ति या कोई रिद्धि सिद्धि आ जाए।
अच्छा, तो फिर किस लिए थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक ही उद्देश्य था, विशुद्ध लोक मंगल।
लोक मंगल?
हाँ, मतलब समाज का भला हो, राष्ट्र की गरिमा बढ़े, और जो विश्व के सामने संकट थे उनका समाधान हो। आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल इसके लिए करना।
ये सोच तो बहुत बड़ी है, मतलब अपनी साधना को पूरी तरह से समाज और विश्व के लिए समर्पित कर देना।
हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी सोच थी, व्यक्तिगत उन्नति से हटकर सामूहिक कल्याण।
तो फिर ये तीनों बड़े अनुष्ठान एक साथ पूरे हो रहे थे, व्यक्तिगत जयंती, पत्रिका की जयंती और ये लोक मंगल वाली साधना। इनकी पूर्णाहुति, इनका समापन कैसे किया गया? योजना भी जाहिर है बड़ी रही होगी।
हाँ, योजना तो असाधारण थी ही।
पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए खास योजना बनाई थी। उन्होंने वो 1958 वाला उदाहरण दिया है।
हाँ, मथुरा वाला, जब 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष शरण पूरे हुए थे।
जी, और तब 1000 कुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ था, वो तो इतिहास बन गया।
बिल्कुल। तो उसी तर्ज पर इस बार ये जो 3 साधनाएं पूरी हो रही थी, इनकी पूर्णाहुति के लिए पूरे देश में, मतलब राष्ट्रव्यापी योजना थी।
पूरे भारत में?
जी।
क्या योजना थी?
योजना ये थी कि पूरे भारत में 1000 जगहों पर 108 कुंडीय यज्ञ होंगे।
1000 जगह और हर जगह 108 कुंडीय यज्ञ?
जी हाँ, 108 कुंड वाले यज्ञ, और साथ में युग निर्माण सम्मेलन भी होने थे।
वाह, ये तो बहुत ही बड़ा स्तर हो गया।
हाँ, विराट आयोजन था, और इसका उद्देश्य भी उतना ही बड़ा था। एक तो लक्ष्य ये था कि एक साल में इन 1000 यज्ञों से वो 1,00,000 यज्ञों का संकल्प पूरा हो जाए।
1,00,000 यज्ञ?
जी, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, इन यज्ञों से क्या होना था कि जगह जगह का जो वातावरण है उसका परिशोधन हो,
मतलब शुद्धिकरण, नकारात्मकता दूर हो।
हाँ, नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, और उन क्षेत्रों में आध्यात्मिक चेतना जगे, भौतिक समृद्धि भी आए, प्रगति का माहौल बने,
यानी पर्यावरण और समाज दोनों का भला।
बिल्कुल, दोनों के उत्थान की बात थी।
यहाँ एक और दिलचस्प बात है, गुरुदेव कहते हैं कि ये सारा काम किसी एक अकेले व्यक्ति का नहीं है।
सही कहा, यहीं पर वो सामूहिक चेतना और संगठन वाली बात आती है। पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा कि ये काम एक समुदाय का है, उस समय उन्होंने इसे प्रज्ञा परिवार कहा।
प्रज्ञा परिवार?
जी, और उनकी दृष्टि ये थी कि आगे चलकर ये सिर्फ एक परिवार या संगठन नहीं रहेगा, बल्कि ये उदार चेतना वाले, मतलब विश्व कल्याण की सोचने वाले लोगों की एक महान बिरादरी बनेगा।
एक महान बिरादरी?
हाँ, और उन्होंने कहा कि इस महान काम में शामिल होना, इसमें सहयोग देना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी।
ये तो व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर संगठित प्रयास का आह्वान है।
स्पष्ट आह्वान था, सामूहिक जिम्मेदारी की बात थी।
और पूज्य गुरुदेव ने अपने परिजनों पर, अपने अनुयायियों पर पूरा विश्वास भी जताया था ना?
बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा साथ रहे हैं वो इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में भी साथ निभाएंगे।
अग्नि परीक्षा, मतलब ये बड़ा आयोजन सफर बनाने की चुनौती?
हाँ, ये चुनौती, और कहा कि इसमें किसी एक का नहीं बल्कि जितने भी प्राणवान कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान लोग हैं, सबकी बराबर की भागीदारी रहेगी।
सबकी बराबर भागीदारी
जी। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक और गहरी बात कही, एक संकेत दिया।
क्या संकेत?
उन्होंने कहा कि युग संधि तक, मतलब सन 2000 के आसपास का जो समय है, जिसे वो परिवर्तन का काल मानते थे, उस समय तक उन्हें जो भी काम सौंपे गए हैं वो उन्हें पूरे करने हैं।
अच्छा।
चाहे उसके लिए स्थूल शरीर रहे या ना रहे, जरूरत पड़ी तो सूक्ष्म शरीर से भी वो सक्रिय रहेंगे।
स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से, ये तो बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है
जी। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय सिर्फ 3 घटनाओं का ब्यौरा नहीं है।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, ये पूज्य गुरुदेव के जीवन का वो मोड़ दिखाता है जहाँ उनकी व्यक्तिगत साधना, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि, वो सब कुछ एक विराट सामूहिक कल्याण के संकल्प में बदल रहा था।
संगठन की शक्ति, सामूहिक प्रयास।
बिल्कुल, व्यक्ति से समष्टि की ओर यात्रा है, व्यक्तिगत सिद्धि से ऊपर उठकर संगठित प्रयास से युग निर्माण की घोषणा है।
एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से हटकर पूरे समुदाय की, बल्कि एक वैश्विक चेतना और जिम्मेदारी की बात इसमें दिखती है।
सही कहा, एक विराट समुदाय की सामूहिक चेतना।
तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। पूज्य गुरुदेव ने सन 2000 यानी युग संधि तक स्थूल या सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहकर कार्य पूरा करने की बात कही। ये कौन सा इतना विराट कार्य हो सकता था जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक यज्ञ, इतना समर्पण और यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत से सक्रिय रहने तक की बात कही गई?
हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। इस पर सोचने से शायद हमें उनके मिशन की गहराई और उसके विस्तार का कुछ और अंदाजा लग सके।
बिल्कुल, चलिए इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।
नमस्कार।